जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
इसलिए यहाँ पर ये चर्चा क्यों उठी, महाप्रभु ने चर्चा क्यों उठाई, क्योंकि अभी पहले हमने देखा पिछले दिन भी पिछले हफ्ते कि महाप्रभु ने 7 दिन तक जो है चारों भट्टाचार्य को सुना जो भी उन्होंने बोला, उसके बाद अब उन्होंने जवाब दिया जो उनसे पूछा गया कि मुझे वेदांत सूत्र सीधे सीधे समझ आ रहे हैं, आपकी व्याख्या समझ नहीं आ रही, हमने घुमाया हुआ बात। अब आगे अगले प्यार में महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अभी हम महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी सारे महाप्रभु डायरेक्टली बोल रहे हैं। प्रत्येक सूत्र के मुख्य प्रधान अर्थ को बिना किसी अनुमान के स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी डायरेक्ट मीनिंग। किंतु आप तो मुख्य अर्थ को त्याग कर अपने मनोकल्पित अर्थ को लेकर आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा महाप्रभु बोल रहे। तो ये देखिए इसमें ये भी देखा जा सकता है कि ह्यूमिलिटी डजंट मीन दैट यू कैन स्पीक द ट्रुथ। विनम्र होना और स्पष्टवादी होना दोनों अपनी अपनी जगह पर रखा जा सकता है। स्पष्टवादी होने के लिए बदतमीज होने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने जो है बहुत ही विनम्रता से अदब के साथ जो है महाप्रभु सारी बात सच कह रहे हैं। उन पर देखिए आप, ये है प्रधान अर्थ है, इसको आराम से समझा जा सकता है, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। पर आप जो इसको छोड़ के जो अपनी व्याख्या दे रहे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण ये चीजें जो है इंडिकेशन है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो है तात्पर्य कैसे लिखते, टीका कैसे लिखते, व्याख्यान कैसे देते। तो यही कि मुख्य अर्थ को समझाने के लिए खुलासा करने के लिए तात्पर्य लिखा जाता है। और बहुत ही ऐसे कम होते हैं, ऐसा नहीं होते, होते हैं सूरत हाला से हो सकते हैं जिसमें मुख्य अर्थ जो है जो मुख्य भाव है उससे अलग दिखाई दे रहा होता नहीं, दिखाई दे सकता। ऐसे सूरत में जो है उसको उसका गौण अर्थ दिया जाता है, सेकेंडरी मीनिंग। जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं वगैरह ले लेते हैं, तो कृष्ण का मतलब भगवान होता है, कृष्ण का मतलब काला भी होता है। तो बोला कि जो काला व्यंजन भगवान है तो नहीं माना जाए, उसलिए फिर सेकेंडरी मीनिंग छोड़ के फर्स्ट मीनिंग लगाना पड़ेगा, कृष्ण वर्णम कृष्ण कृष्ण। तो जब हम कृष्ण वर्णम बोलते तो काला शब्द होते, पर अयाम भी वाला वर्ड इस्तेमाल कर उनका अर्थ ये इस्तेमाल कर। पर जब ये देख रहे तो मुझे देखना पड़ेगा कि कॉमन सेंस भी कुछ चीज़ होती है, ये काला कलर जो है वो भगवान नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे तब उसकी जरूरत पड़ती है कि इसका ऑल्टरनेटिव मीनिंग क्या है, दूसरा मीनिंग क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, कौन सा अर्थ ठीक लगेगा। तो ऐसे करके जो है हमारे आचार्य जो चीज़ों को देखते हैं। तो आगे अब आज का जो प्यार है उसको करिए, फिर इसके साथ में बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति जे मुख्य अर्थ करे सेई से प्रमाण, प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति जे मुख्य अर्थ करे सेई से प्रमाण, प्रमाणे रमद श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति जे मुखार्थ गई से प्रमाण। शब्दार्थ पढ़ेंगे धर्म की चल रही प्रमाणे प्रमाणों के मध्य मध्य में श्रुति वैदिक पक्ष प्रमाण प्रमाण प्रधान मुख्य श्रुति वैदिक पक्ष ये जो कुछ मुख्य अर्थ मुख्य अर्थ कहे कहते हैं शेषे वही प्रमाण भी है, किंतु वैदिक प्रमाण को सर्वोपरि मानना चाहिए। वेदों में वर्णित सिद्धांतों का मुख्य अर्थ सर्वोत्तम प्रमाण है। इस संबंध में तात्पर्य, इस संबंध में जिन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए वे हैं, जो प्रभुपाद बता रहे हैं, जी गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ, जी गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ अनुच्छेद 10 और 11 पहला जो पार्ट है, इस उस पर श्रीमद्भगवद् विद्याभूषण का भाष्य तथा ब्रह्म सूत्र के शास्त्रीय योनित्वाद नाम से जो सूत्र है, पहला पहला खंड, पहला अध्याय, पहला तीसरा सूत्र, तर्को प्रतिष्ठान दूसरा खंड, पहला अध्याय, 12वां सूत्र, 11वां सूत्र तथा शुद्धेश दोष के मूलत्वाद दूसरा खंड, पहला अध्याय, 27वां सूत्र। श्लोकों की श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य तथा बलदेव विद्याभूषण द्वारा दी गई टीकाएं। श्रील जी गोस्वामी ने अपनी सर्वसम्मानिनी नामक पुस्तक में 10 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया है, प्रत्यक्ष अनुभव, वैदिक प्रमाण, ऐतिहासिक संदर्भ, कल्पना आदि, संकल्पना आदि, ये 10 प्रमाण है चर्चा करेंगे। यद्यपि सबको सामान्यतया प्रमाण माना जाता है, किंतु संकल्पना प्रस्तुत करने वाले, वैदिक प्रमाण पढ़ने वाले व्यक्ति तथा अनुभव द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने वाले व्यक्ति में निश्चित रूप से 4 दोष पाए जाते हैं, यथा वह गलती करता है, भ्रमित होता है, धोखा देता है, खाता भी व्यस्त, और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। यद्यपि प्रमाण सही हो सकते हैं, ध्यान से समझ लेंगे, यद्यपि प्रमाण सही हो सकते हैं, किंतु व्यक्ति अपने भौतिक दोषों के कारण भ्रमित हो सकते हैं। ये यानी कि हो सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण सही हो, आदमी धोखा कर जाए, अनुमान भी ठीक निकले, आदमी धोखा कर जाए, शब्द हमेशा ठीक होते हैं, आदमी ही धोखा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, प्रत्यक्ष प्रस्तुति को छोड़कर बाकी में यह संभावना बनी रहती है कि अनुमान सही ना हो, इसलिए निष्कर्ष यह है कि प्रत्यक्ष प्रस्तुति को ही प्रमाण माना जा सकता है, अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता। किस मामले में? भगवत विषय, वह तो मात्र प्रमाण के निश्चित करने का साधन है। आगे देखते हैं ऐसे सब चीजें, लेकिन थोड़ा सा ड्राई गड़बड़ लगेगा क्योंकि लॉजिकल चीजें पाते हैं दान भर दिया। भगवान गीता के प्रारंभ में ही कहा गया है, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र सम वेद युग सम माम का मानवाश्चैव किं गुरुत्वतः संजय। भगवद गीता में कथन अपने आप में प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ स्थान में युद्ध के लिए कौरव तथा पांडव एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद उन्होंने क्या किया, यही धृतराष्ट्र का संदेश है राष्ट्र का। यद्यपि यह कथन अत्यंत स्पष्ट है, किंतु नास्तिक लोग धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों का भिन्न अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए श्री जी गोस्वामी ने किसी प्रकार की व्याख्या पर आश्रित न रहने को चेतावनी दी। श्लोकों की व्याख्या किए बिना ही उन्हें यथारूप स्वीकार करना अधिक श्रेयकर है। देखिए हम प्रभात ये कह रहे हैं, श्लोकों की व्याख्या किए बिना जो है उसको यथारूप स्वीकार किया जाए, इसलिए प्रभात ने भगवद गीता यथारूप। तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ मुख्य विषय है इसके अंदर कि कैसे शास्त्र को हम समझते हैं। मैंने पूछा था, मैंने ये तात्पर्य पढ़ के मुझे भी समझ नहीं आ रही करना क्या। तो रोहित ने कहा कि शास्त्र को लोग क्यों नहीं अपनाते, थिंक ओवर इट। मैं सोच रहा था, मैंने पाया इसमें द प्राइमरी रीजन कि लोग शास्त्रों को नहीं अपनाते हैं बिकॉज वो किसी ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर नहीं देख पाते जो शास्त्रों के हिसाब से जिंदगी जी रहा हो। यह मुख्य विषय एक प्रचारक के रूप में, एक लीडर के रूप में हम लोग जो कृष्णा भवन के अंदर जो लोग फेस्टिव डिवोटीज हैं उनकी सेवा ये है कि वो नवागंतुक लोगों में या जो भक्त कच्चे हैं उनमें ये गलती ना निकालें कि आप शास्त्र को क्यों नहीं अपनाते, रादर ये देखें कि क्या वजह है कि हम उनको इंस्पायर नहीं कर पा रहे कि शास्त्र को क्यों नहीं अपना पा रहे। शास्त्र को ना अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिफॉल्ट है। बाधक जीव के लिए, बाधक जीव का मतलब ये है कि वो बधा हुआ है, तो बधे हुए व्यक्ति के लिए किसी जीव को अपनाना ठुकराना दोनों उसके बस की बाहर की बात है। जिसके हाथ बंधे हुए, मुंह बंद है, पैर बंधे हुए, उसका अपनाना क्या और ठुकराना क्या? ये वो व्यक्ति जिसके हाथ खुले हुए हैं उसका फर्ज है उसका हाथ खोले, उसका मुंह खोले, उसके कान खोले, उसकी आंख खोले। तो ये एक प्रचारक का फर्ज है कि वो व्यक्ति जो शास्त्र को नहीं अपना रहा है ये देखे, बजाय इसके कि आप ये गलती निकाले जो शास्त्र को नहीं अपना रहे, ये देखिए शास्त्र को क्यों नहीं अपना पा रहे। Why is not able to do what he is not able to do, what he is not doing? तो इसलिए शुरुआत से जैसे यहाँ पर तो इस तात्पर्य में भी देख सकते हैं और जी गोस्वामी जी तत्व संदर्भ में भी इसी तरीके से शुरुआत होगी कि सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर आप भगवत विषय के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, सत्य यानी परम सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये फैसला करना जरूरी है कि किस चीज को सत्य माना जाएगा और किसके माध्यम से, कौन सा माध्यम अपनाया जाएगा जिससे सत्य की को स्थापित किया जाए। What is the means of establishing truth? Because सबसे पहले इसी पर डिबेट हो सकता है, what is truth? So different अलग अलग मुख्तलिफ राय हो सकती है, राय हो सकती है कि मेरे हिसाब से ये सत्य है, मेरे हिसाब से ये हकीकत है। तो क्या है, इसीलिए सबसे पहले इस पे एग्री करना जरूरी है कि क्या वो माध्यम बनेगा, क्या वो मीडियम जिससे सत्य की सत्य स्थापित किया जाए। खासतौर पर अगर कोई नास्तिक हमें मिलता है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो राधर देन उसको शास्त्र का प्रमाण देने से पहले समझदारी यही होगी कि उससे पूछा जाए कि आप कौन सा प्रमाण स्वीकार करते हैं। समझदारी ये राधर देन अपनी मेहनत करने से पहले कि शास्त्र में ये बताया गया है, सबसे पहले ये कि आप किसको प्रमाण समझे, फिर उस हिसाब से चले। तो इसीलिए आमतौर पर जो शास्त्र को नहीं मानते तो वो किन चीजों पर अपने आर्गुमेंट बेस करेंगे, किन चीजों पर जो है अपना तर्क जो है रखेंगे। इसी में आंखों देखा सच, कानों सुना या कल्पना की हुई, लॉजिक लगाए हुए, ये सारी चीजें तो वहां से शुरुआत होती। इसीलिए जैसे यहाँ पे बताया गया और तात्पर्य मिल जाएगा जी गोस्वामी ने अपने सर्वसंवादिनी नामक पुस्तक में 10 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया, प्रत्यक्ष अनुमान अनुभव वैदिक ऐतिहासिक संदर्भ। मैं 10 प्रकार के प्रमाणों में पढ़ देता हूँ क्या कहेंगे। पहला उन्होंने बताया है संदर्भ में, इसका नाम है उसको कहते हैं उपमान। उपमान का मतलब है कि जो दो चीजों का सादृश्य देख के समझा जाए, सिमिलैरिटी से चीज समझा जाए कि अगर पानी गीला कर सकती है तो दूध भी गीला कर सकती है क्योंकि दोनों तरल पदार्थ है। सिंपल एविडेंस, सिंपल एग्जाम्पल है, दस टाइम्स सिमिलैरिटीज पर बेस चीज है, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा है। नेक्स्ट हो गया अर्थापत्ति, इसको कहते हैं अर्थापत्ति। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज का अंजाम देख के उसकी वजह जानी जा सकती है, कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं कि अगर ये चीज ऐसी हुई है ऐसा हो, अगर जहां पर धुआं है तो वहां पर आग जरूर रही होगी, ये कॉज एंड इफेक्ट, ये दूसरी अर्थापत्ति। तीसरा अनुपलब्ध, अनुपलब्ध का मतलब है कि जहां पर बिल्कुल उल्टा, अगर किसी चीज को देख के हम किसी और चीज के वजूद के बारे में पता कर सकते हैं, तो किसी चीज की ना मौजूदगी के गैर मौजूदगी या ना मौजूदगी की होने की वजह से हम किसी चीज का प्रमाण निकाल सकते हैं कि अगर ये नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता। तो अगर जैसे इन्होंने कुछ भी इसकी मुर्गी की तीन टांगें नहीं हो सकती तो मुर्गी के बच्चे की भी तीन टांगें नहीं हो सकती, कैसे? क्योंकि मुर्गी की तीन टांगें नहीं होती। बात समझ? तो एंड वी यूज दिस, इसको कैटेगराइज किया हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, बातचीत में कई बार हम ये लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। ये कैटेगरीज है, ये बहुत आगे तक इसको, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है पर इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। और तब ये यही जो प्रिंसिपल है ये हमें उससे बाहर निकाल पाता कि क्या निष्कर्ष होगा, कैसे हम एक नतीजे में पहुंचे। ऐसे अनुपलब्धि, अनुपलब्धि क्योंकि उपलब्धि नहीं है उस चीज की, वही अपने आप में प्रमाण है। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बट दैट कैन स्टिल बी अंडरस्टूड। फोर्थ है, इसको कहते हैं आर्षम, आर्षम प्रयोग। आर्षम का मतलब है कि आर्षम, 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 मैं गला बंद है वहां बोल दीजिएगा। तो आर्षम, आर्षम का मतलब है कि साधु संतों की बात है। अभी साधु संतों की बात है और श्रम प्रमाण में क्या फर्क है, ये बात है केवल इस तरीके से है कि हो सकता है उनका जो रेफरेंस है वो एग्जैक्ट ना हो पर फिर भी उनके अपने मेरिट पे, उनके अपने स्ट्रेंथ पे वो चीज मान ली जाती। जैसे प्रभात के लेक्चर में बारे में सुनोगे प्रभात बोलते प्रभात बोलते कि एक भगवदगीता प्रभात कृष्णा इज सेइंग सम वर्ड्स इन फिफ्थ चैप्टर, नो सेवंथ चैप्टर, ठीक है? तो आपको बता सकता क्या है, फिफ्थ चैप्टर नहीं था, सेवंथ चैप्टर था, कौन गलत है क्या? हाँ, सो दैट इज अपेरेंटली हो सकता है कि श्लोक इधर नहीं इधर है बट इट इज साउंडेड, इट मे नॉट बी द एग्जैक्ट कोटेशन, इट मे नॉट बी द एग्जैक्ट, जैसे प्रभात का प्रभात की सेइंग्स में अगर आप श्लोक का बुक देखेंगे उसके अंदर मिलेगा आपको, जैसे चैतन्य चैतन्यमृत का श्लोक है जहाँ भागवत किया मण वैष्णव स्थान है, प्रभात जहाँ भागवत किया पढ़ो एक लेक्चर में भागवत किया मण भागवत स्थान है, सो द सेम मीनिंग, वैष्णव भागवत होता है भागवत वैष्णव होता है, डू यू मान दैट डजंट चेंज द मीनिंग, तो दैट इज ऑल्सो प्रमाण। तो आपको ये पकड़ सकते हैं नहीं उसमें वैष्णव लिखा होता है मैं भागवत कैसे बोल रहा हूँ, मतलब कन्वे हो गया भाव कन्वे हो गया, तो हमें वहीं जाके पता चलता है, तो कहते हैं कि ये ऊंचा गांव है, हमें क्या पता, बोर्ड थोड़ी लगा हुआ 5000 साल से, आप समझ रहे, आपको कैसे पता ये ऊंचा गांव, ये श्रृंगार वट, आपको कैसे पता श्रृंगार वट, कृष्ण के जाने के बाद पूरा वृंदावन खाली हो गया था, उसके 100 साल 250 साल 300 साल वृंदावन बसा फिर उजड़ा खेल, तो कौन बैठा हुआ वहां पे बैठ के जो बोल करे, बट द लोकल बिलीव दैट चेष्टा का मतलब यहाँ पर एफर्ट में होता, चेष्टा का मतलब है यहाँ पर सिंबल्स, यानी कि जैसे मान लीजिए ये क्या मतलब है, ओके या करेक्ट है ना, बट इसका मतलब ठेंगा दिखाना भी हो सकता है वैसे, तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने दिखाया पर आपको मतलब समझ लिया, तो सिंबल्स, देयर आर साइंस एंड सिंबल्स है ना, उससे भी हम एविडेंस देते हैं, समझते हैं चीजों को, किसी पर्टिकुलर साइंस में कुछ एक उसका अर्थ निकाल लेते हैं। एंड सेवेंथ इज संभावना, जो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं दुष्ट संभावना संकल्पना संभावना प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा फिर हम बाकी ये जो प्रमाण हम जानते हैं सब अनुमान और प्रत्यक्ष, तो ये 10 प्रमाण है टोटल, ये टोटल 10 प्रमाण। अब ये जो 10 प्रमाण है, ये 10 प्रमाणों में से शब्द को छोड़ के बाकी 9 प्रमाण तब भगवत विषय के वस्तु भगवत वस्तु को समझने के लिए तब अपनाए जाते हैं जब ये प्रमाण शास्त्र प्रमाण के साथ चले। पर जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता उसको शास्त्र तक लाने के लिए ये बाकी 9 प्रमाण बहुत कारगर साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जब यहाँ पर टीचिंग करते हैं आमतौर पर हमारे यहाँ पर 70 सेशंस होते हैं, तो 70 सेशंस में हमारे पहला और दूसरा सेशन होता है, 7 में से पहले 2 दिन शास्त्रों की बात ही नहीं होती। पहले 2 दिन यही मशक्कत करी जाती है कि ये बाकी प्रमाणों से उसको शास्त्र प्रमाण में विश्वास दिलाना चाहिए। एक बार ये हो गया उसके बाद काम बहुत आसान हो गया इस तरीके से। और ये जो हम परंपरा फॉलो कर रहे हैं सेशन में, ये तरीका जो है ये भी एवं परंपरा प्राप्त है कि जी गोस्वामी भी ऐसे करें, उन्हें तत्वसन में शुरू किया पहला प्रमाण खंड 3 मंगलाचरण प्रमाण खंड देन प्रमेय खंड, तो वो प्रमाण खंड में वो यही है इज एस्टैब्लिशिंग एविडेंस कि एविडेंस कैसे कैसे पूछे। जैसे कोर्ट में भी अगर चश्मदीद गवाह नहीं है तो क्या उसका एविडेंस इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि हालात इस प्रकार से थे, उस हालात से जो हम इस नतीजे में पहुंचे कि ये चीज ऐसी होगी। तो इस तरीके से तो हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के एविडेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ये हालांकि ये चीज सही बात है कि अपने आप में चार ये प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि इंद्रिया अपूर्ण होने के कारण ये प्रमाण जो अपने आप में कंक्लूसिव नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रमाण है ही नहीं। कई बार प्रचार में जो है कुछ इतना आगे चले जाते हैं हम बोल देते नहीं नहीं सब ये क्या नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण ही नहीं होता फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर कोई आपकी घटपट्टी में बंदूक रखेगा बोले निकाल देते जेब में, आप बोलोगे नहीं नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहे वो सच नहीं है तो ऐसा नहीं है। वो परम सत्य तक पहुंचने के लिए अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये है उसकी इंडस्ट्री। इट इज नॉट इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ टेकिंग अस टू द एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसको और मदद की जरूरत है, कुछ हद तक हम लेके जा सकते भगवान तक। जैसे अभी यही है हम सबको बोलते हैं ये सब दर्शन कर रहे हैं, सभी भक्त लोग खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष ही है ना, शब्द से थोड़ी दर्शन कर रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं कैसे थोड़ी प्रमाण नहीं, प्रमाण है पर सिर्फ इस दर्शन से जो भगवान का सब कुछ ही समझ आ जाएगा। दे नीड टू हियर अबाउट कृष्ण बट नीड टू सी कृष्ण ऑल्सो, दोनों चीजें जरूरी है। पर कानों से सुने हुए कृष्ण जो है ज्यादा समझ आएंगे, ये फर्क है, ये फर्क। तो इस तरीके से ये चीज और इसके ऊपर जो है प्रत्यक्ष ऊपर अनुमान क्यों है, क्योंकि अनुमान की जो नींव है जो उसकी बुनियाद है वो है लॉजिक तर्क। क्यों कि देखिए जानवर और इंसान में एक बहुत सारे भेद है, उनसे एक भेद ये भी कि जानवर जो है लॉजिक नहीं लगा सकता ज्यादा, इंसान लॉजिक लगा सकता है ना, भाई कुत्ता जो है चांद को देख के छलांग मारेगा भौंकेगा उसको देख के, आदमी नहीं भौंकेगा छलांग मारेगा क्योंकि लॉजिकली अंडरस्टैंड्स कि वो देखने में छोटा है पर है बहुत दूर। ये मिसलैंड क्यों, क्योंकि इसमें जैसे मैन इज रैशनल एनिमल कि वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो पर फिर भी उसकी प्रॉब्लम है लॉजिक की कि कई बार एक लॉजिक दूसरे लॉजिक से काट दिया जा सकता है, काटा जा सकता है, तो इस वजह से जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाता भगवान तक पहुंचने। पर लॉजिक है जरूरी है समझ लो, हम समझते हैं सब समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में दुनिया को किसी ने बनाया है, अगर दुनिया है ऐसी हर दुनिया में हर चीज किसी के द्वारा बनाई जाती है तो दुनिया भी किसी के द्वारा बनाई जाती होगी, लॉजिक लॉजिक। तो ऐसे तो इस लॉजिक को काट भी सकता है चाहे तो, कि क्या 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 प्रूफ है कि दुनिया को भी किसी ने बनाया? हो सकता है पहले से बनी हुई डिबेट हो सकती है इस चीज में, और हो सकता है मैं मानने से इनकार कर दूं आपका लॉजिक कि नहीं हर चीज दुनिया में बनाई जाती है, तो इस दुनिया को भी किसी ने बनाया हो, हाँ सब तो ये कैसे भी हो सकती है ये सब चीजें। तो इसीलिए कौन फैसला करेगा इसका? इसीलिए अंततः हमको शास्त्र में आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंफीरियर चीज से आप सुपीरियर चीज को नहीं समझ सकते। आप इंद्रियों के द्वारा मन को नहीं समझ सकते, मन के द्वारा इंद्रियों को समझ सकते, बुद्धि के द्वारा मन को समझ सकते, मन के द्वारा बुद्धि को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है ये भगवान को समझने के लिए जो कि उनसे ऊपर है ना काफी है, दे आर लाइक इनसफिशिएंट। इसीलिए हमको अंततः शास्त्र में आने की जरूरत पड़ती है। अब हमारा जो स्ट्रेंथ है, हम लोग जो लोग कृष्ण भाव में है, हमारा जो स्ट्रेंथ है इज नॉट एज ए स्कॉलर बट एज ए प्रैक्टिशनर। हम लोग ज्ञानवादी नहीं, हम ज्ञान का अनुशीलन जरूर करते हैं पर उसको अपनाने के लिए जिंदगी में, और उससे जो हमें अनुभव मिलता है वो हमारे कृष्ण भाव को आगे बढ़ाता है। हम लोग ये कि हमें ये किताब पता है, ये किताब पता है, ये किताब पता है, ये किताब पता है ना, सिर्फ ये नहीं हो सकता पता हो पर उसका निचोड़ देखना पता। जैसे हर जगह पर जो है अगर आप प्रभुपाद के अनुवाद पढ़ेंगे श्लोकों का, क्योंकि जैसे प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं दैट इज द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द श्लोक, तो डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द श्लोक क्या है वो हम ऐसे कई श्लोकों में जैसे जैसे देव बना भक्ति तथा यथा देव तथा गुरु वाला श्लोक में संतरा हाथ में आए बिना संतरे का रस हाथ में नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस टाइप से तो इम्पोर्ट ऑफ द स्क्रिप्चर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर हर जगह इस टाइप से आता है। तो ये तो उसका मार्ग क्या होता है, वो मार्ग कैसे आता है? वो मार्ग जो है वो प्रैक्टिस से आता है, साधना से आता है। तो तब जाके हम उसका निचोड़ समझ सकते हैं और वो हमारी स्ट्रेंथ है। अगर हम किसी कई बार होता है जो किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो संस्कृत प्रोफेसर है उससे बातचीत करें तो हम हार जाएंगे उसे, श्लोकों के मामले में हमें धर्मशाही करते हो पर हमारी स्ट्रेंथ जो है उससे श्लोक से जीतना नहीं, प्रैक्टिस से जीतना। बहुत अच्छे हैं आपने ये किताबें पढ़ी हैं, जैसे मैराथन में तो कई बार कई प्रकार के लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस करना ही है, फॉरन प्रैक्टिस पर आ जाइए तो वहां बात दे सकते हैं। और वही प्रचार का स्ट्रेंथ, और वही प्रचार की स्ट्रेंथ होनी चाहिए तब जाके वो दूसरों को शास्त्र अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये हमारा फर्ज है कि लोग क्यों नहीं शास्त्र अपना पाते, क्योंकि उनको ऐसे प्रेरणा प्रेरित करने वाले लोग नहीं मिलते। प्रेरित क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन शास्त्रों को हम पालन नहीं करते ठीक से। तो ये मेन मकसद है, तो तभी वो चीजें डायरेक्टली समझ आती है। इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग कब होती है यूजुअली? जैसे मायावादी लोग जब इंडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग जो अद्वैतवादी लोग करते हैं वो मायावादी जी, सबसे पहले चर्चा करती है मायावादी मतलब तो हर कोई वो व्यक्ति जो सीधा सीधा भगवान से नहीं जुड़ा हो उसके अंदर उतना उतना मायावाद होगा, हर बात जीव के अंदर अलग अलग मात्रा में मायावाद होता। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान की बात को नहीं मानना चाहते, तब इंटरप्रिटेशन होता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इसलिए हम उस चीज को ग्रेजुअली घुमा देते और ये वृत्ति जो है एक स्टैंडर्डाइजेशन का रूप ले लेती कि ये ऐसा नहीं है, शास्त्र में ऐसा बोला गया, बस ये मतलब है अपने हिसाब से। तो भागवत गीता में सब पता है कि 16वें अध्याय के 24 श्लोक में तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, तो शास्त्र के प्रमाण से जो है अपने कार्य को जो है व्यवस्थित कर सकते, क्या कार्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो तो ये हमारा मतलब बेसिक प्रमाइस जिससे हम आगे आगे की रिलेशन ले सकते, नहीं तो हमारे में एक कर्म में कोई खास फर्क नहीं है। किताब पढ़ने के बावजूद भी तीन प्रकार के लोग होंगे, एक ने जिसने कभी पढ़ी नहीं, एक ने जिसने बहुत सारी पढ़ी है, और एक ने जिसने पढ़ी है और करी है। तो ये डिफरेंस, ये जो तीसरी कैटेगरी का जो ये होती है, ये भक्त है, टीचर है या दूसरे को प्रेरित कर सकते, ये अपने आप को निकाल सकता है और दूसरे को भी निकाल सकता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और ये शास्त्र पढ़ने के बाद जब इसका हम अपने गुरुजनों के गुरुजनों के निर्देश में उनका पालन करते हैं, तब जाके ये हमें ये भेद बुद्धि भी देता है कि शास्त्र की कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी। हायर लॉ एंड द लोअर लॉ, जैसे द हाईएस्ट लॉ हमारे लिए क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णु कृष्ण जाति जी सर्व विधि निषेध एवं किं कर, जितने भी और नियम आएंगे वो इस नियम के दास माने जाएंगे। ये कहां से पालन करके आते हर मामले में, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण प्रभुपाद कई बार पढ़ते हो रहे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण मीन्स चैंटिंग रीडिंग फॉलोइंग द रिवर्टिव प्रिंसिपल्स, ये सर्विस सब कुछ, ऑल ऑफ दिस कंबाइंस टू बिकम रिमेंबरेंस ऑफ कृष्ण। दो तीन जन को मैंने कृष्ण दे दिया वर्ड्स डायरेक्ट वर्ड्स, रिमेंबरेंस ऑफ कृष्ण मीन्स दीस थिंग्स। तो ये करने के लिए, ये करने के लिए जब हम कर रहे हैं तो कोई चीज जो इसके रास्ते में बाधा आ गई उसे हटाई जाएगी, और कोई चीज जो इसमें सहायक है वो अपनाई जाएगी, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन। तो ये ऐसे हम शास्त्रों को इंटरप्रेट करते हैं, ये डायरेक्ट मीनिंग। और बाकी सारी ऐसी कोई चीज जो शास्त्र से ही आ रही है, इसको काटती हम उसे काटते, we are so focused about this, इसीलिए इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। वेरी स्पेसिफिक, क्या हो सकता है बुद्धि शास्त्र में ऐसा कि जो क्या कहते हैं दूसरी चीजों को काटती हूँ, हाँ काट सकती हूँ, जैसे मान लीजिए तंत्र कर्मकांड है ना, इसके घर पे ये वाले कमरे का पंखा लगे, ये तीन चीजें बोलो बस, होता है ना, उस घोंसले का उससे निकाल के वो डंडी निकाल के उसमें ये वाला धागा बांध के इसके साथ नींबू चिपका के यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा। ये कहाँ से आता है, ये भी शास्त्र से आता है, शास्त्र किसकी वाणी है, भगवान की वाणी है, भगवान ये सब भी सिखाते टोटे टोटके, हाँ जो उसी रास्ते में चलना चाहते तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कम से कम इस बहाने और शास्त्र के अंदर रहते, इतनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आउटराइट नास्तिक से ये वाला और भक्त उस मार्ग में नहीं जाएगा, क्यों, प्रतिकूल से वर्जन, इसलिए विस्मरण ना जाते चाहिए सर्व विधि निश्चित है, इस वजह से क्योंकि यहां से भगवान का स्मरण खत्म हो जाएगा उसका, फिर ये स्मरण चलेगा कि किसके धागा बांध हूं, किसका बाल तोड़ गया हूं, ये समझ में बात करो। तो ये इस वजह से ये इस चीज के अंदर रिजल्ट दिया गया। That's why people have to accept scriptures by our behavior, our practice, our example, our inspiration. हम उनको जैसे अभी मैं जब इस वक्त जैसे भाग लोग बाहर जाते तो वो क्या करते हैं, करने they are compassionate enough, क्योंकि मैंने और वो दोनों चीजें देने जाते हैं, किताब भी देने जाते हैं, टेस्ट भी देने जाते हैं, तो क्योंकि टेस्ट ऑल्सो टेस्ट कैसे मिलता है केवल जैसे हमारे भक्तों को देख के लोगों टेस्ट मिलते, गाड़ियाँ कैसे बोलते हैं भक्तों को रोज बात करते शाम को आकर, तो ऐसे भगवान जब रोड पे जाते हैं प्रेमानंद वगैरह जाते हैं तो कहीं दूसरे डिवोटीज जो है उनको गाड़ी से बुला के बुलाते हैं, ऐसे लोग ये लोग मतलब कौन है, ये लोग कौन है, हाँ देख के अलग ही लगते हैं, देख के एक तो देख लग सी होता है, अगर कोई ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर में जो किसी ने अगर वीडियो कैमरे से शूट कर रहा तो उसमें देखने लायक होता है, जैसे ही रेड लाइट की गाड़ियां लगती हैं, शू जैसे कमांडो ऑपरेशन होता है, फटाफट फटाफट सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। हां हां मतलब हड्डी से दम दबा सकते बस, इट्स लाइक सुसाइड बॉम्बर्स, बर्स बांधी होती है लोगों ने, दर 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 दर, और उसके बाद स्ट्राइक रेट होता है। हमारे पास ऑपरेशन का टाइम क्या होता है, जैसे ना टाइमर ऑन हो जाता है, क्लॉक हो जाता है टाइमर, और टाइमर में चल रहा होता है, और टाइमर यहाँ नहीं होता, टाइमर सामने होता है, रेड लाइट का टाइमर चल रहा होता है, 59 seconds, 59, 58, 59 है ना, काउंटडाउन चल रहा होता है, दर 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 दर, और उसी के अंदर होता है कि कितने टारगेट सेट कर रहे हैं, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, देखते हैं, ओके 10 minutes पर राउंड है ना, जैसे फायरिंग का होता है, कितने राउंड पर मिनट फायरिंग होगी, 600 बुलेट्स पर मिनट, कुछ भी, तो ऐसे ऐसे फायरिंग होती है, तो वो समझ देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, सी दैट। हाँ हाँ सब अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, जैसे यूनिट होती है पूरी है ना, जैसे कमांडो यूनिट होती है, तो सबके पास सब कुछ अलग अलग वेपन होते हैं, क्लोज क्वार्टर एंगेजमेंट का वेपन होता है, वो दूसरे गोली चलाएगा, वो इंतजार करेगा सामने जाऊंगा तब गोली चलाएगा, वो जो होते हैं डिस्टेंट वो होते हैं 2 किलोमीटर दूर से फायर करेगा, टारगेट इज फायर कर देगा, तो उसी टाइप से होता है। हाँ तो ऐसे होता है, सब कुछ ऐसे होता है ना, कई बार जो है जाम होता है ना, उसमें जाम में जो हमारी बत्ती गाड़ी जैसी होती है, और उसके बाद जो पीछे जाम लगा होता है, धड़ा धड़ जो है डेवोटीज उतरते हैं। सो व्हाट इज दैट, इट्स पर्सनल, यू नो, बाय पर्सनल एग्जांपल, से इस उन्होंने गोपाल कृष्ण स्वयं महाराज ने हिंदुस्तान में जब आया उस 75 के आसपास उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया बिग लार्ज स्केल पर, पहले भी आना जाना था, तो उस वक्त उन्होंने पहला ये बना तो न्यूज की उन्होंने क्या निकाल कि जितने भी पब्लिशिंग हाउसेज हैं यहाँ पर और जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको अप्रोच करेंगे, उनके वहाँ पे हर उसमें जो किताबें रखवाएंगे और देखते क्या होता है, सब सब जगह पर किताबें रखवाई और एक या दो महीने बाद जो रिपोर्ट्स लेके आए तो देखा कि 2 निकली है, 5 निकली है, ये निकली नहीं है, समझ नहीं आ रहा है पेमेंट अटकी हुई है, तो प्रभात को रिपोर्ट दी कि प्रभात हमने ये स्कीम चलाई थी तो रेस्पॉन्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तब प्रभात ने क्या बोला, तब यही तो बोला प्रभात, माई बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द एंथुसियाज्म ऑफ माई डिसाइपल्स, मेरी किताबों को देख के भी लोग किताब नहीं लेते, मेरे मेरे भक्तों को देख के किताबें लेते, so we inspire them to take the books, we inspire them to read the books, ये लोग किताबें क्यों नहीं लेते, लोग किताबें क्यों नहीं पढ़ते, लोग शास्त्रों का पालन क्यों नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि वो एग्जाम्पल नहीं देखते, और लोग कहाँ मिलते हैं, लोग मिलते हैं सड़कों पे, मॉलों में, घरों में, और अगर हम यहाँ बैठे हुए तो फिर कैसे काम चलेगा, इसीलिए जरूरी, इसीलिए गौर किशोर दास बाबा जी ने 32 को बाहर भेजा, जाओ भाई, तो मैं लैटिन के अंदर बैठ के जो है जब कर रहा हूँ, मेरा जब कोई नहीं देख रहा, तुम मेरे जब की प्रोडक्ट हो, तुम्हें सारी दुनिया देखेगी, जाओ बाहर, सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमारा सिस्टम ये दिया गया कि हम साधना जरूर करते हैं मंदिर के अंदर बैठ के, घरों के अंदर बैठ के, फिर घरों के अंदर नहीं बैठे रहते, जनरली कंडीशन सोल की फितरत अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक एक भक्त जी के लिए, आम आदमी के लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है, एक आम आदमी के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या होती है, उसका घर है ना, और माया का काम है घर में घुस के मारना, इसीलिए उसको अंधकूप कहा गया है, भक्तों के लिए इसीलिए घर को अंधकूप कहा गया, घर में घुस के मारती है, जब तक आप बाहर निकल के अटैक नहीं करोगे तो घर में घुस के मारे मार जाओगे, ये वो सारे भक्त जो मंदिर में बैठ जाते हैं वो मंदिर बंद हो जाते हैं, आपके घर की तो विश्रांति क्या है, हमसे पहले इस परंपरा में बहुत हो चुका है, ऐसे बड़े बड़े मठ बंद हो गए, क्यों, जैसे ही मठों के अंदर बैठे हैं बस माया अंदर घुस के मारेगी, अपने आप को घर में बैठ के महफूज ना समझे, घर में घुस के मारेगी, बाहर निकल के मार करें, एक कमजोर आदमी के लिए एक ताकतवर अगर उसका किससे मुकाबला है तो उसका सिर्फ एक ही जीतने का वो है कि उम्मीद है पहला वार वो करे, क्योंकि वो वार सहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं बचेगा, उसके बाद किसी काबिल नहीं बचेगा, माया का वार जब होगा उसके किसी काबिल नहीं बचेगा, माया कैसे अटैक करती है, माइंड थोड़ा सा घर चाहता थोड़ी घुमाना, उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, टिक 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 टिक, मैं ऐसे कैसे करूंगा, टिक 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 टिक, गए खत्म. सो बिफोर दैट हैपेंस यू टू स्ट्राइक. अंग्रेजी में इसलिए कहावत, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. वार करना जो है प्रतिरक्षा का सर्वोत्तम उपाय है. सो दैट्स व्हाई वी प्रीच, किसी भी तरीके से प्रीच करो. गीता निकालना, भगवत गीता मैराथन में इसीलिए कि कम से कम एक महीना तो करा ही जाए, मतलब पूरा स्नान करें, किसी भी तरीके से गीता लेके जाए, गीता की वाणी दें, कुछ भी जैसे मर्जी करें. अटैक अदरवाइज यू कैन एलिमिनेट. क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत मुट्ठी भर संख्या में, मुट्ठी भर हैं हम लोग. कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितने लोग हैं दिल्ली के अंदर, दुनिया के अंदर? कुछ लाख, मुट्ठी भर है. हमारा ओनली चांस ये है कि हम अटैक प्रचार करें, बढ़ाएं, अटैक करें, नहीं तो हम गए. एक एक को मारे, घुस घुस के मारे. और एक घुस के मारने का सबसे मतलब पहला क्या होता है बताए, मिठाई करते तो सबसे पहले क्या होता है, किसी मिठाई का कुछ ज्यादा होती है, उसके हाथ से जो है उसका हथियार छीन लिया जाता है. सबसे पहले जो पिटाई, खूब पिटाई होने वाली, इसका मतलब क्या, सबसे पहले माला छीनी जाएगी हाथ से. जब जिस वक्त के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बेटा उसकी माला कम हो रही है, अब जब बंद हो रही है, इसको मतलब खूब मार पड़ने वाली, तैयार हो जाए. और आप माला अपने हाथ में रख नहीं पाओगे कब तक, तब तक जब तक आप मार नहीं करोगे, प्रचार नहीं करोगे. ये बात सच है. एनीबडी कैन कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस ओपन टू एनीबडी. हर किसी के लिए कृष्णा भावनावृत आंदोलन है, हर कोई कृष्णा भावनावृत बन सकता है, और हर कोई कृष्णा भावनावृत रह सकता है. उसके लिए मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी. कृष्णा भावनावृत में आने के लिए जो प्रोसेस है, रहने के लिए वो प्रोसेस नहीं है. रहने के लिए तो डिफरेंट प्रोसेस है, टू प्लीज नॉट टू फॉलो आचार बाजार दोनों. हम देख सकते हैं अपनी तादाद बढ़ाएं. ऐसा समझ लीजिए कि अपने और माया के बीच में जितने लोग डाल सकते हैं उतना हम माया से महफूज हैं. जितने भक्तों को हम और माया के बीच में डाल सकते हैं, जितने लोग हम ले आएंगे उतना हम पीछे. पहले उनका नंबर आएगा फिर हमारा नंबर, हो सकता है उससे पहले निकल जाए. पर अगर कोई नहीं है मेरा माया के बीच में तो फिर तेरा क्या होगा? So therefore we have, preaching is not a luxury. Preaching is our only hope of survival. हम यहीं पर समाप्त करते हैं. तो किसी का कोई प्रश्न, एक प्रश्न लेंगे, समय हो चुका है. ठीक है, मैं इस मत में तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद. Yeah. 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 Yeah